नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवाओं के देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान 19 लोगों की मौत और 300 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल को इस्तीफा सौंपा। तकनीकी रूप से नेपाल में इस समय राष्ट्रपति शासन लग गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं काठमांडू में मौजूद हमारी संवाददाता श्वेता सिंह से। जी श्वेता, नेपाल में अभी ताजा हालात कैसे हैं?
लवलीन, देखिए, यहाँ पे जो कर्फ्यू 2 दिन से था, युवा प्रदर्शनकारी उस कर्फ्यू को मान नहीं रहे हैं। लगातार प्रदर्शन चल रहा है। जितने भी दिग्गज नेता थे उन सभी के घरों में आग लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो या फिर संसद भवन हो, सिंह दरबार हो या फिर जितने भी प्रमुख आपके सरकारी दफ्तर थे, सब में पत्थरबाजी की गई है, आग लगा दी गई है। जबकि प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है। उसके उपरांत भी अभी एक फाइनल जो समाधान आना था, एक इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कैसी सरकार हो, कैसा नेता आगे बढ़ करके आए, ये अभी तक उभर के नहीं आया है। जबकि मुख्य सचिव जो नेपाल सरकार के हैं, उन्होंने जनता से लिखित निवेदन किया है कि धैर्य रखें, शांतिपूर्ण बर्ताव करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, अब शांतिपूर्ण समाधान सारे दल मिलकर निकालेंगे। तो एक शांतिपूर्ण समाधान की प्रतीक्षा की जा रही है। जबकि आप देखिए, यहाँ पर जो कर्फ्यू लागू हुआ है तो आपका इंटरनेशनल त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है आगजनी के कारण। आसपास में आगजनी थी तो उड़ने वाले जितने जहाज हैं उनको उनमें आग लग सकती थी। तो इसको लेके आपका जो यातायात है हवाई मार्ग से वो बंद कर दिया गया है फिलहाल। और देखिए, जो नखू में रवि लांछने जो युवा नेता कैद थे ललितपुर में, उनको रिहा कर दिया गया क्योंकि वहां पे जो कैदी गृह था उस पे भी लोग अटैक कर रहे थे, इस कारण से वहां से उनको निकाला गया है। और अभी प्रमुख यहाँ के जो लोकप्रिय युवा नेता मेयर हैं काठमांडू के बालन शाह, उनकी तरफ से निवेदन आया है युवाओं को शांति बनाए रखने के लिए। तो मुझे लगता है इन युवा नेता के रिक्वेस्ट को जरूर युवा सुनेगी और कल उभर के नया निर्णय क्या होगा वो आएगा तो हम अपने दर्शकों, अपने
श्रोताओं को हम जरूर बताएंगे। जी श्वेता, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को नेपाल के अधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने बताया कि भारत नेपाल के घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच काठमांडू के हवाई अड्डे बंद होने के कारण एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई विमानन कंपनियों ने दिल्ली से आने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली और काठमांडू के बीच उड़ानें आज रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो ने कहा है कि काठमांडू आने जाने वाली सभी उड़ानें स्थगित हैं। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को अपनी यात्रा पुनर्निर्धारित करने या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिफंड का दावा करने का परामर्श दिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतगणना लगभग इसी समय शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। मतदान सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं संसद परिसर में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। जी दीपेंद्र, मतगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है, ताजा जानकारी क्या है आपके पास?
देखिए लवलीन, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद मतों की गिनती शुरू हो गई है और करीबन 1 घंटे में परिणाम आने की संभावना है, जिसके बाद देश को पता चल जाएगा भारत के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के उपराज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। लवलीन, मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला और लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने मतदान में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सुबह 10 बजे मतदान किया था। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की कुल संख्या 781 है और जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा जो है 391 है। इस समय एनडीए के पास 425 से अधिक सांसदों का समर्थन है। वहीं विपक्षी खेमे की बात करें तो उनके पास कुल 300 से अधिक सांसद है, जो बहुमत के आंकड़े से कम है। जी
दीपेंद्र, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।